ओम शांति। आज का हमारा विषय अंतिम समय के लिए तैयारी क्या की जाए, क्योंकि दिन प्रतिदिन बाबा हम बच्चों को समय की चेतावनी देते रहते हैं। आज की मुरली में भी था कि बच्चे समय बहुत कम, परंतु कभी कभी देखा जाता है भाई बहन मिलते हैं तो पूछते हैं, आप क्या समझते कभी विनाश हो, इस वर्ष में होगा, दूसरे में होगा, तीसरे में होगा। खुद की फिक्र नहीं है, दुनिया की फिक्र है, दुनिया कभी कलर्स होगी। क्योंकि कहा जाता है आज हमारे हाथ में है और कल काल के हाथ में है। वास्तव में देखा जावे तो विनाश का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, उसका इंतजाम करने की दरकार। हमारे से तो जब भी पूछते हैं कभी विनाश होगा, तो हम तो उनको यही कहते हैं, हमारा तो यही अनुभव है, हम जिस दिन बाबा के बने उसी दिन हमारे लिए पुरानी दुनिया खलास हो गई। जिसके लिए दुनिया है ही नहीं, वो विनाश होवे या रहे, उसको क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि मम्मा से किसी ने पूछा कि मम्मा आपकी आयु इतनी छोटी और आप और दादियों से तो देरी से आई, अब मम्मा कैसे क्या बन गई। दूसरी जो दादियां थी उनको ये टाइटल नहीं मिला, आपको कैसा टाइटल मिला, आपने उसके लिए क्या पुरुषार्थ किया। तो मम्मा ने बताया, मैंने कोई खास पुरुषार्थ नहीं किया, परंतु मेरे को सदैव ये याद रहता है कि मेरा ये जो श्वास चल रहा है यही मेरा अंतिम श्वास। आप ही बताइए, जिसको 24 घंटा मौत याद होगा उसकी स्थिति कितनी उपराम हो। इसीलिए मम्मा ने सदैव अपने ऊपर अटेंशन रखा, जैसा बाबा आज भी बोल रहे थे, अगर मनसा में तूफान आते हैं तो कोई बात नहीं, वाचा में और कर्म में नहीं आने चाहिए। पर पहले दिन से मम्मा ने ये पक्का किया था और हम बच्चों को भी समझाती थी कि जो बाबा तुमको कहता है कि मन में आएगा तो चलेगा, वाणी और कर्म में नहीं आवे। एक दिन यही बाबा आपको सावधानी देगा कि मनसा में आना भी पाप है, यह भी विक्रम। अभी आजकल तो वही बात चलती है, ये तो पुरानी मुरली थी जो रिवाइज हो रही थी, जिसमें बाबा ने कहा कि मनसा में अगर चल गया तो अर्चा नहीं, परंतु अभी बाबा छूट नहीं देते। अभी तो बाबा यहां तक भी कहते हैं, अगर श्रीमत पर नहीं चलते हैं, बाप को याद नहीं करते हैं, तो ये भी विक्रम। अभी तो बाबा हम बच्चों को बहुत सावधान करते हैं। तो मम्मा ने पहले दिन से इस बात की तरफ ध्यान दिया कि मेरा एक भी सेकंड वेस्ट नहीं होना चाहिए, सदैव ईश्वरीय याद में रहे। दुनिया का अंत तो छोड़ो, पर हमारा अंत कभी आएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। और हम जो पुरुषार्थ करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि हमारा अंत सहज हो। और अगर हमें प्रैक्टिस नहीं होगी इस बात की, तो अचानक जब अंत आएगा उस समय बाबा अगर भूल जाएगा तो हमारी की कमाई सारी चट हो जाएगी। इसीलिए बाबा घड़ी घड़ी हम बच्चों को कहते कि बच्चे निरंतर मेरे को याद करो, मेरी याद में कभी अंतर नहीं पड़ना चाहिए। अगर निरंतर याद रहेगी तो कोई भी घड़ी अंतिम घड़ी होगी तो आपको पश्चाताप नहीं होगा, परंतु आप हंसते हंसते बाप के साथ जा सके। तो मम्मा ने विशेष इस बात के ऊपर पुरुषार्थ किया, हमारे जो पूर्वज हो गए उसको उनके भी आप देखेंगे तो जानकी दादी को अंत में क्या याद था, मैं कौन और मेरा कौन, बस और कुछ भी याद नहीं था। जब मैं कहो तब आत्मा और मेरा कहो तब शिव भाव, और कोई उसको दिखाई नहीं पड़ता था। मैं कभी कभी दादी से पूछती थी, दादी इतनी बड़ी आयु में आप इतनी भागदौड़ क्यों करते हैं? जिसको ध्यान में होगा, नोट होगा, उसको पता होगा, जो लास्ट ईयर था दादी का अंतिम बरस, उसमें दादी ने बहुत ट्रैवलिंग किया, तो हमारे को बहुत ख्याल होता था इतनी बड़ी आयु में और दादी इतनी भागती रहती है इधर की उधर, उधर की उधर। तो इसीलिए मैं कभी कभी पूछ लेती थी, दादी आप इतना क्यों भागदौड़ करते, हम लोग भागते हैं ना, आप नहीं भागो। दादी बोलती थी, देखो मेरे को जो बाबा ने दिया है वो मेरे को सबको देना है, जाने के पहले वो मेरे को सबको बांटने का है। तो इसीलिए एक प्लेन से उतरती थी दूसरे प्लेन में चढ़ती थी 103 बरस की होकर के। तो ये जो अपना अंत अगर याद होता है कि अभी हमें वापस जाना है, मनमोहिनी दीदी को भी हमने देखा, दीदी से जब अंत में लास्ट में मिलने जाते थे उनकी तबीयत ठीक थी एकदम, मिलने जाते थे तो दादी जाते थे तभी भी, हम लोगों को तो आदत है ना, मिलेंगे तभी भी ओम शांति कहेंगे और जब विदाई लेंगे तभी भी ओम शांति कहेंगे। तो मनमोहिनी दीदी बोलती थी ओम शांति क्या कर दे, जब ही आओ तभी कहो ओम शांति और जब भी जाओ तभी कहो अब घर जाना है, घर को याद करो। उसके बाद ये जो हमारा गीत है ना, आदि अंत का मंत्र यही है अब घर जाना है, उसके बाद ये गीत बनाया गया। तो दीदी भी हमें हमेशा घड़ी घड़ी घर की याद दिलाती थी। प्रकाशमणि दादी को तो मैं और मेरा जो है वो एकदम पक्का था। दादी से कभी भी हम लोग पूछते थे, दादी आपका क्या विचार, कोई भी बात होगी तो दादी का विचार पूछेंगे, तो दादी कभी भी ये नहीं कहती थी मेरा ये विचार है, कहेगी दादी का ऐसा विचार, जैसा दादी अलग है और ये खुद अलग है, ऐसा साक्षी होकर के पाठ बजाती थी। और गुलजार दादी तो हमारी थी तपस्या की मूर्ति। तो इसीलिए हमने देखा कि ये जो महान आत्माएं होकर के गई हैं, इन्होंने कितनी तपस्या किया, कितने घर जाने के लिए अपने ऊपर कितनी मेहनत किया, इसका फाउंडेशन क्या है। तो आप बाबा की जीवन कहानी देखेंगे तो शुरू से लेकर के बाबा ने, जब बाबा का अवतरण हुआ, बाबा के अवतरण होते ही एक सेकंड में बाबा ने सब कुछ त्याग दिया, क्योंकि दो पेपर हरे को अंत समय पर, खुद के अंत समय पर देने की जरूरत। पहले हम खुद का अंत देखते, फिर दुनिया के अंत की भी बात करें। वो कौन सी दो बातें हमें ध्यान में रखनी, दो परीक्षाएं देनी हैं। एक तो हमारी आत्माभिमानी स्थिति कहां तक है, दूसरा नष्ट मोह स्मृति लब्ध हम कितने बने। तो पहले दिन से लेकर के ब्रह्मा बाबा ने इसके लिए कितनी मेहनत किया। ब्रजेंद्रा दादी बताती थी, जब शुरू शुरू में बाबा की प्रवेशता हुई, बाबा सारा सारा दिन बैठ करके कापियां लिखता था। उस कापी में क्या लिखता था, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा। एक कापी भर डालेगा, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा लिख। दूसरी कापी भरेगा, जसोदा आत्मा है, जसोदा आत्मा है। घर के जितने मेंबर हैं उनके नाम की कापियां भरता रहता था, फलाना आत्मा है, ये आत्मा है, वो आत्मा है। तो बाबा ने अपने ऊपर इतनी मेहनत किया आत्माभिमानी बनने की, क्योंकि आधा कल्प की हमको आदत है देह अभिमान की। और हम लोग देखते हैं मम्मा और बाबा, हम सब ब्राह्मण जानते हैं कि इन दोनों का तो पद मुकरर है, डिसाइड है कि ये ही जाके 1 और 2 बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। इस बात का पक्का निश्चय होते हुए भी उन्होंने इतनी मेहनत किया। आप और हम तो अभी रेस में भाग रहे हैं, हम लोगों के पद का कोई ठिकाना नहीं है, हम कितनी मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। पहले दिन जब शुरू में मम्मा बाबा के पास आई, बाबा गद्दी पर बैठा हुआ था, मम्मा बाहर चप्पल उतार रही थी पैर की अंदर आने के लिए। बाबा ने मम्मा को देखा और बाबा ने कहा कि ये तो वही कल पहले वाली राधे बच्ची आ गई। जब बाबा ने ऐसा कहा और मम्मा ने ये सुना कि मैं ही राधा बनने वाली हूं, उस दिन से लेकर के मम्मा ने राधा बनने का खूब पुरुषार्थ किया। ऐसा नहीं मैं राधा हूं, राधा बनने ही वाली हूं, इसीलिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं। मम्मा सारी सारी रात टेरेस पर जाकर के बाबा की याद में बैठती थी, आत्माभिमानी की स्थिति में बैठती। अभी मम्मा और बाबा इन दोनों का पद मुकरर होते हुए है, मम्मा बाबा ने इतनी मेहनत किया, आपको और हमारे को मालूम पड़ जावे हमारा कौन सा पद है, हम तो चादर लेके आराम से सो जावे कि हमारा पद तो मुकरर है, पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत है। तो ये बड़ा महान अंतर था उनमें और हमारे। तो इसीलिए ये जो आत्माभिमानी स्थिति है, बाबा जो घड़ी घड़ी हम बच्चों को कहता है कि बच्चे आत्माभिमानी बनो। मरना किसको कहा जाता है, मरना माना शरीर छोड़ना, आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। तो पहले से ही अगर तुम ये अभ्यास करते हैं शरीर से अलग होने का, तो अंत के समय तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं हो, क्योंकि कहा जाता है जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसको 1000 बिच्छू काटे इतनी तकलीफ होती, इतना दर्द होता है, क्योंकि उसमें ममता रहती है। तो इसीलिए इस देह को भूलने के लिए बाबा हम बच्चों को घड़ी घड़ी प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं कि ये प्रैक्टिस करो कि मैं आत्मा मुख से बोल रही हूं, मैं आत्मा आंखों से देख रही हूं, मैं आत्मा हाथ से लिख रही हूं। हम लोग बाबा को पत्र लिखते थे तो बाबा ने लास्ट लास्ट में कहा, तुम पत्र लिखते हो ना बाबा, फलाने फलाने का याद प्यार, ऐसा नहीं लिखो, ऐसा लिखो फलानी आत्मा का याद प्यार, तो ऐसा ही लिखना चालू कर दिया सबने, बाबा आत्मा का याद प्यार। बाबा कहता था अरे पर कौन सी आत्मा है, शरीर का नाम तो लिखो, नहीं तो बाबा को कैसा मालूम पड़े। तो बाबा ने ये प्रैक्टिस कराई बैठ करके आत्म अभिमानी बनने की, देह के अभिमान को तोड़ने की, क्योंकि देह भान और देह अभिमान इसमें बहुत फर्क। देह का अभिमान जो है, मैं फलाना हूँ, फलानी पोस्ट वाला हूँ, फलानी जात वाला हूँ, फलाने देश वाला हूँ, फलानी भाषा वाला हूँ, ये हो गया अभिमान। परंतु भान, मैं स्त्री या मैं पुरुष, इस भान को भुला करके आत्म भान में रहना, आत्म अभिमानी बनना, इसमें मेहनत लगी। तो बाबा ने अलग अलग युक्तियां करके इस भान को भूलने को लगाया। जैसा शुरू शुरू में बाबा ने बच्चों से प्रैक्टिस कराई कि मैं शिव शक्ति हूं, शिव शक्ति माना दोनों भी आ गए उसमें, पुरुष भी आ गए, स्त्री भी आ गए। तो अगर अपने को स्त्री समझेंगे तो भय पैदा होगा, अगर अपने को पुरुष समझेंगे तो रोब आएगा। तो ये संस्कार भुलाने के लिए बाबा ने शिव शक्ति का पाठ पक्का कराया। मैं विष्णु चतुर्भुज हूं, उसमें भी दोनों आ जाते। तो ये प्रैक्टिस करा करा के बाबा ने इस देह से बच्चों को अलग किया। हम देखते थे, चाहे जो भी दादी होती थी, प्रकाशमणि दादी है या जानकी दादी है, कोई बड़ी आयु वाली मिलने को आती थी ना दादी से, दादी कहे ये बिचारी बहुत बुढ़ी हो गई, तो हमें हंसी आती थी। हम कहते थे दादी आपसे भी ज्यादा बुढ़ी है क्या? अरे मैं बुढ़ी हूं क्या, तुम क्या समझती है मेरे? क्यों? क्योंकि बाबा ने बच्चा बना दी, गोदी का बच्चा, वो भी छोटा बच्चा बना दी, इसीलिए इतनी चुस्ती रहती है, इतनी अंदर में शक्ति रहती है आत्म अभिमानी बनने के कारण। तो बाबा ने ये प्रैक्टिस करा करा के, योग का मतलब ये है जो उल्टा अभ्यास है उसको सुलटा करना, इसको योग कहते। तो आत्म अभिमानी बनने का बाबा ने ये पाठ क्यों पक्का कराया? क्योंकि जब तक हम अशरीरी नहीं बन सकते हैं, बनते हैं तब तक ऊपर उड़ नहीं सकते। तो अंत के समय बाबा की याद कैसे रहेगी? एक तरफ तो ये शरीर हमको खींचेगा और दूसरी तरफ हमको बाबा के पास जाना है, तो बहुत समय से शरीर छोड़ने का हमें अभ्यास होना चाहिए। क्योंकि ये जो शरीर है ये किसका बना हुआ, किसका बना है? पांच तत्वों का बना है, मिट्टी का बना है, इसको मिट्टी का पुतला कहते हैं ना। शरीर ये मिट्टी का पुतला है, ये मिट्टी मिट्टी में मिल जाती। मिट्टी में कौन सा आकर्षण है बताइए, कौन सा आकर्षण? इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण है। अब कोई भी चीज ऊपर फेंको तो कहां जाती है? वापस नीचे। इस मिट्टी में ये आकर्षण है, वो चीज को ऊपर नहीं जाने देगी, वो नीचे लाएगी। तो ये जो शरीर है, अगर इसका भान है हमारे को, तो हम ऊपर बाबा के पास जाना चाहेंगे तो ये शरीर हमको नीचे लाएगा, ये अपनी आकर्षण की तरह हमको खींचेगा। इसीलिए बाबा हमको अशरीरी बनने का अभ्यास कराता। तो जितना जितना हम अशरीरी बनते हैं, शरीर से डिटैच होते जाते हैं, अलग होते जाते हैं, उतना हम सहज बाबा के पास जा सकते, जब चाहे तभी जा सकते हैं, जितना समय चाहिए उतना समय उसके पास रह सकते हैं, ये शरीर हमको खींच नहीं सकता है। जब हमारे को इस शरीर से ही अलग होना है तो दूसरों के शरीरों की तो बात ही नहीं। बाबा ने हम बच्चों को ये पक्का कराया है, क्योंकि बाबा मिलने के पहले हम इस शरीर रूपी जेल में बंद थे, आत्माएं बंद थी, पिंजरा कहो जेल कहो, इसमें बंद थे ना, कुछ नहीं कर सकते थे, उधर ही पड़ 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 करते थे। क्या करें, बोलना तो नहीं था पर हमारे मुंह से निकल गया, देखना तो नहीं था पर हमने देख लिया। क्यों ऐसा? क्योंकि हम कर्म इंद्रियों के अधीन हो गए, कर्म इंद्रियों के वश में हो गए। कर्म इंद्रियों ने अपना अधिकार हमारे ऊपर लगा दिया। तो ये बात चल रही थी कि हम आत्मा इस पिंजरे में, इस जेल में बंद हो गई थी, परंतु बाबा ने आकर के हमें ज्ञान और योग के पंख दिए और इसमें से उड़ना सिखाया। तो पहले जो हम कैदी बन के रहते थे, रहना तो इसी शरीर में है हमको, पहले कैदी बन के रहते थे, अभी कैदी बन के नहीं रहते, कर्मचारी बन के रहते। जैसे आप जेल में देखते हैं ना, एक कैदी होते हैं, दूसरे कर्मचारी होते हैं, जेलर होते हैं संभालने वाले। वो तो जहाँ चाहिए वहाँ जा सकते हैं, जो चाहिए वो खा सकते हैं, जिसके साथ मिलना चाहिए वो मिल सकते हैं, और बेचारे कैदी जो होते हैं उनके वश में कुछ भी नहीं होता। तो पहले हमको इस शरीर ने कैद करके रखा था, उसके बाद बाबा ने आके हम बच्चों को क्या किया, इससे स्वतंत्र बनाए। तो इसीलिए हमको ये प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है कि मैं जो आत्मा हूँ, मैं इस देह से अलग हूँ, इसकी घड़ी घड़ी जब हम प्रैक्टिस करते हैं, आत्म अभिमानी बनते हैं, तो अंत के समय हमारे को कोई भी तकलीफ नहीं होगी, हम सहज ही बाबा के साथ जा सकेंगे। अभी जब आत्म अभिमानी अपनी देह में ही नहीं फंसना है, तो औरों की देह से भी हमारे को न्यारा होना है। हर एक को ये दो परीक्षाएं देनी है, एक अंत के समय आत्म अभिमानी स्थिति और दूसरी है नष्टो मोह स्मृति लब्ध की स्थिति। तो जब ये देह ही मेरी नहीं है, तो दूसरों की देह में फंसने की बात ही नहीं होती। अगर हम किसी की भी देह में फंस जाते हैं, तो क्या होता है, किसी में भी अगर हमारी अटैचमेंट होगी, तो जिस समय हम बाबा की याद में बैठते हैं, उस समय वो हमारे आगे पीछे आकर के घूमती आत्मा, क्योंकि हमने उसके साथ रस्सियां बांध के रखी हुई, बुद्धि हमारी उसके साथ अटैच है। फिर क्या करते हैं, बाबा को याद करना चालू करेंगे तो वो व्यक्ति आगे खड़ा हो जाएगा। तो जिस प्रकार जिसमें मोह होता है वो योग लगने नहीं देता है। मोह को आप कम नहीं समझना, ये भी बहुत बड़ा विकार, काम और क्रोध नहीं, पर मोह उसका भी दादा है, वो अपनी गले की फांसी है। तो वो हमारे को बाबा के पास जाने नहीं देता। तो जैसा मोह को जीतने की आवश्यकता है, वैसा ही घृणा को भी जीतना है। गीता का सार है नष्टो मोह स्मृति लब्धा, पर वास्तव में देखा जावे नष्टो मोह घृणा मोह नष्टो मोह और घृणा को भी नष्ट करना है। अगर घृणा माना नफरत, अगर किसी के प्रीत भी हमारे को नफरत है, तो बाबा की याद के समय वो भूत बन के हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। अब करके देख लो, जैसा नष्टो मोह बनना है, वैसा नष्टो घृणा भी बनना है। उससे भी इसीलिए कहते हैं राग और द्वेष इस दो को त्यागो। राग माना मोह, द्वेष माना नफरत घृणा। इन दोनों को जब तक नहीं त्यागते हैं, तब तक हमारी बुद्धि परमात्मा के साथ नहीं लगती। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को बताया है, ना तुम्हें किसी के ऊपर प्रभावित होना है, ना तुम्हें किसी को अपना समझना है, ना किसी को पराया समझना है। जब किसी से मोह होता है ना, तो मोह होगा तो हमारी बुद्धि उसमें लग जाएगी, और जब घृणा होगी तो हमारे को नफरत हो जाएगी। उससे नफरत होने के कारण उसके लिए उल्टे सुलटे विचार चलते रह गए, तो हमारे को फुर्सत ही नहीं मिलेगी शिव बाबा को याद करने। तो अंत के समय कुछ भी याद नहीं आवे सिवाय बाप के, बाबा ही हमारा संसार है, ये स्थिति हमारी पक्की रहे। इसीलिए हमारे को ये सब कुछ छोड़ने की आवश्यकता है, अर्थात भूलने की आवश्यकता। जब तक भूलेंगे नहीं, तब तक ईश्वरीय याद रह नहीं सकती है। अभी लोग क्या करते हैं, जन्म भर तो देहधारियों को याद करने में, काम धंधे में लगे रहते हैं, फिर जब भी कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो आके उसको बोलते राम बोल राम। अरे बेचारा कहाँ से राम बोलेगा, उसने जन्म में कभी राम बोल के ही नहीं देखा। आप बताओ उसको राम याद आएगा या उसको देहधारी याद आएगी, उसको दाम याद आएगा, क्या याद आएगा? तो बाबा कहते हैं ऐसी स्थिति तुम्हारी नहीं होवे, इसीलिए तुम्हें क्या करना है, अशरीरी बनना है और तुम्हें नष्टो मोह जरूर बनना, मोह रखना है, प्यार सबसे करो। आज भी सारी मुरली प्यार की थी, प्यार करो, परंतु कौन सा प्यार करो? रूहानी प्यार करो, निस्वार्थ प्यार करो, पर दिल का जो प्यार है वो एक दिलबर के साथ लगाओ। सच्चा जो प्यार है वो उसके साथ होवे, बाकी औरों के साथ काम चलाने के लिए प्यार तो रखना ही है, उसके बिगर तो चलेगा ही नहीं। बाबा ने कहा ना, मैं दुख हरता सुख करता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो तो तुम्हारा भी यही धंधा है, सभी को सुख देने का धंधा है, ना कि किसी को दुख देने का काम है। सुख वो दे सकता है जो अपने को सुखदेव समझता, सुखदेव का गायन है ना, तो हम सुखदाता के बच्चे, सब सुखदेव और सुखदेवियां हैं। तो हमें सारा दिन ये देखना चाहिए हम ये काम करते हैं, सुखदेव और सुखदेवी का काम करते हैं। अगर सबको सुख देंगे तो उसका रिएक्शन हमारे को सुख मिलेगा, अगर दुख देंगे तो हम खुद ही दुखी होंगे। कभी कभी तो बाबा बहुत कड़े शब्दों में बोलते हैं, दुख देंगे तो दुखी होके मरेंगे। बाबा श्राप नहीं देता है, बाबा कर्मों की गहन गति समझाता है, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है, इस कर्म क्षेत्र के ऊपर हम जैसा बीज बोते हैं कर्मों का, उसका रिएक्शन हमारे को जरूर भोगना पड़ता है। तो इसीलिए हमारे को इन बातों का ध्यान रखते हुए अपने ऊपर पूरा अटेंशन रखना है, अशरीरी बनना है, आत्माभिमानी बनना है और नष्टो मोहा बनना है। किसी भी देहधारी की याद नहीं आवे, ये पाठ हमारे को जरूर पक्का करना है। आप देखो शिव ब्रह्मा बाबा को जिस समय निश्चय हुआ कि शिव बाबा मेरे द्वारा नई दुनिया स्थापन कर रहा है, उसने एक सेकंड में सारा त्याग कर दिया, विचार भी नहीं किया। बाबा कहता था जिसके हाथ ऐसे हैं पहला पुर उसको मिले, अर्थात जिसके हाथ ऐसे हैं, देने के हाथ है, फर्स्ट नंबर उसको ही मिलता है। तो कोई कोई समझते, अरे ईश्वर के अर्पण होना, ईश्वर के अर्पण हो गए तो हमारा तो कुछ भी नहीं रहेगा, वो तो दाता है, वो किसी का लेता नहीं है। परंतु जब हम ईश्वर अर्पण करके चलते हैं, प्रवृत्ति में रहते हुए हमारी वृत्ति को न्यारा बना करके चलते हैं, तो क्या होता है, उसका समझ के चलने से, उसकी अमानत समझ के चलने से हमारे को एकदम हल्कापन रहता है। और वो ही चलाने वाला है, वो ही कराने वाला है, वो करण करावनार स्वामी है, इसकी अनुभूति हमको होती रहती है। और हम सब क्या बोलते हैं, हमने तन मन धन सब ईश्वर अर्पण किया है, तो चेक करने की आवश्यकता है, सचमुच हमने ईश्वर अर्पण किया है? हमारा तन किस में लग रहा है, हमारा मन कहाँ लगा हुआ है, हमारा धन कहाँ लगा हुआ है? हम ईश्वर अर्पण करके चलते हैं या नहीं करके चलते हैं, ये हरेक को खुद कोई चेक करने का है। क्योंकि हम जो कुछ भी उसके अर्पण करते हैं वो उसका हजार गुना करके हमारे को रिटर्न करता है नई दुनिया में। वैसा भी आप देखेंगे, कोई व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में जाता है तो इधर का पैसा उधर नहीं चलता, इधर की करेंसी वहां नहीं चलेगी। आप अमेरिका में जाएगी तो भारत की करेंसी थोड़ी चलेगी, आपको ट्रांसफर करनी पड़ेगी। तो हम जो भी आत्माएं हैं, मनुष्य हैं, हम जो भी बाबा के बच्चे हैं, हमारे पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, तन मन धन समय स्वास्थ्य संकल्प, कितनी बड़ी प्रॉपर्टी हमारे पास। तो इस सब को हमको ट्रांसफर करना, ट्रांसफर करना अर्थात ही इसको क्या करना, कैसा ट्रांसफर करेंगे, इसमें से तो कुछ भी हमारे साथ नहीं चलने वाला है, ये सब यहाँ ही छूट जाएगा। तो इसको जितना जितना हम ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं, पुण्य के कारण जितना जितना हम औरों की सेवाओं में लगाते हैं इसको, उतना उतना ये जो हमारी प्रॉपर्टी है ये पुण्य में जमा होती जाती है, और वो पुण्य की गठड़ी हम साथ में लेके जाते हैं, जिसका रिटर्न हमको नई दुनिया में मिलता है। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को ये सब बातें समझाता है कि बच्चे सिर्फ इंतजार नहीं करो कि कभी अंत आएगा, पहले इंतजाम करो कि अंत का समय जो है उस समय हमारी स्थिति क्या होगी। और दूसरी बात ये हो गई खुद के लिए, अभी दुनिया के लिए हमें क्या करना है, सृष्टि के अंत में क्या होगा, क्योंकि बाबा कहते हैं अंत के समय तुम्हारे आगे क्यों लगेगी भिखारियों, कोई तुम्हारे से सुख मांगने आएगा, कोई शांति मांगेगा, कोई शक्ति मांगेगा, कोई आनंद मांगेगा, इसीलिए तुम्हें अपने भंडारे भरपूर करने। हम पूर्वज हैं सबके, सर्वात्माओं के। आप कल्प वृक्ष में देखेंगे तो हम ब्राह्मणों का जो स्थान है वो मूल में है, तो हमेशा जो वृक्ष है उसको पानी कहाँ से मिलता है, खाद कहाँ से मिलती है, मूल से मिलती है। एक एक पत्ते को वो खाद और पानी पहुंचाता है। तो उसी प्रकार हम जो बाबा के बच्चे हैं, हमारे द्वारा ही बाबा सर्व आत्माओं को सुख शांति शक्ति का दान देता। तो इसीलिए हमको अपना स्टॉक इतना जमा करना है कि आज कोई भी हमारे से शक्ति मांगने को आवे, शांति मांगने को आवे, आनंद मांगने को आवे और हमारे पास नहीं होवे तो हम दूसरों को क्या देंगे। जिस समय पर हमारे पास महाराष्ट्र में लातूर में बहुत बड़ा धरणी कंप हुआ और बहुत लोग मर गए, ऐसे एक एक घर के 11-11, 12-12 लोग मर गए थे, ऐसे बेचारे रास्ते में वो बैठे हुए लोग, ऐसे घर नहीं, कुछ नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, तो उनको सब लोग कोई खाना दे रहे थे, कोई कपड़े दे रहे थे, कोई कुछ दे, पर इतने हताश होकर के बैठे थे। उनको बोला तुम भोजन, जो बहने भी दे रही थी उनको पैकेट खाने के, तुम भोजन, बोला हमको भोजन नहीं चाहिए, हमारे को कपड़ा नहीं चाहिए, हम अपने हाथ से हमारे 11 प्रियजनों को जला के बैठे, उनके मुर्दे हम अभी जला करके आए हैं, हमारे को ये नहीं चाहिए, हमको शक्ति दो, आप हमको शांति दो, आप हमको शक्ति और शांति की अभी जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं खाने पीने की। वो अभी इतने लोगों को बैठ के जलाएंगे और इतना सारा दुख का, इतनी सारी सीनरियां देखेगी, उस समय किसको भूख लगती है क्या, उस समय किसको प्यास लगती है, उस समय तो हालत क्या होती है। तो बाबा कहता है कि अंत के समय बच्चे खूने नाहक खेल चलेगा, तो जब खूने नाहक खेल चलेगा तो उसका नजारा देखने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए एक तो तुमको निर्भय बनना पड़ेगा और दूसरा तुमको अशरीरीपन का अभ्यास होगा। तो तुम्हारे देखते देखते क्या होगा, तुम्हारे जो भी लोग मर रहे हैं उनको देख के अशरीरी स्थिति होगी तो तुम्हारी हलचल नहीं होगी। अच्छा, दूसरे आज भी पेपरों में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं लोग, फलानी जगह धरणी कंप हो गया, उधर बाढ़ आ गई, इतने मर गए, अच्छा मर गए हो गया, परंतु जब भी खुद के मरते तभी कितना हलचल में आ जाते, दूसरे मरते तो इतने हलचल में नहीं आते हैं, जब भी खुद के प्रियजन मरते हैं तभी हलचल में आते हैं। तो इन आंखों से देखते देखते हमारे प्रियजन जाएंगे, हम देख रहे हैं वो बह रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, तो उस समय पर हमारी स्थिति जो है वो कितनी ऊंची होनी चाहिए, कितनी नशोमुआ की होनी चाहिए, कितनी आत्माभिमानी स्थिति होनी चाहिए और कितनी निर्भय स्थिति होनी चाहिए। बाबा कहते हैं उसकी तैयारी करो, उसके बाद ही मिरुआ मौत मलू का शिकार की तुम मिसाल बनेंगे, वो मरते रहेंगे और तुम्हारे को नई दुनिया के नजारे दिखाई पड़ेंगे, ये नहीं दिखाई पड़ेगा। तो उसके लिए इतना समय से नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का अभ्यास होगा, तभी हम अपने आंखों से ये देख सकेंगे, इतनी दर्दनाक सीने देखेंगे और फिर बाबा के साथ हंसते हंसते अपने घर में जाएंगे। तो हमें अभी वो तैयारी करनी है, क्योंकि हमें सिर्फ खुद का ध्यान नहीं रखना है, पूर्वजों को हमेशा यही रहता है कि हमारी जो भी बिरादरी है वो सदा के लिए सुखी रहे, तो हमारे पास जो भी आएगी अंत में उनको हम सुख शांति दे सके, उनको हम शक्ति दे सके, उनको हम हिम्मत दे सके, तो वो सारे गुण हमको अपने में भरने। जब तक हमारे में वो गुण नहीं होंगे, हमारे में वो शक्तियां नहीं होगी, तो मांगने वालों को आप क्या देंगे? तो ऐसा नहीं समझो जो यहाँ बैठ के मुरली पढ़ते उनका ये काम है, सबका, आप लोगों का भी यही काम, सभी का ये काम है, बाबा के बच्चे हैं ना, क्योंकि सभी हक रखते हैं कि हम सतयुग में आवे, श्री कृष्ण के साथ साथ आवे, हम पूरा पूरा वर्षा लेवे, वर्षा लेने के समय तो सब अपना हक रखते हैं, फिर औरों का कल्याण करने में भी हक रखना पड़ेगा। ऐसा वो इतना भोला नहीं है, उसका नाम भोलानाथ है शिव भगवान का, परंतु ये समझ लेना वो भोला नहीं इतना, वो बहुत पक्का सौदागर है, आप जितना करेंगे उतना मिलेगा, आप तराजू है उसके हाथ में, कौन क्या करता है। एक दिन मुरली पढ़ रहे थे, बाबा ने कहा बाबा अंत में किसको मदद करेगा, जो उसका मददगार बनता है उसको ही वो मदद करेगा, अगर हम उसके मददगार बने ही नहीं है उसके कार्य में तो क्यों हमारे को मदद करने के लिए बांधा हुआ है क्या। तो इसीलिए अगर हमको मदद चाहिए ऐसे समय पर तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका पूरा पूरा मददगार बन के चलना पड़ेगा, उसके कार्य में पूरा सहयोग दे करके चलना पड़ेगा, तो उसकी भी हमको मदद मिलेगी, प्रकृति की भी हमको अंत के समय पर मदद मिलेगी। नई दुनिया में प्रकृति दासी होती है, परंतु यहाँ अंत के समय जब पांचों ये तत्व नाचेंगे, अभी तो कहाँ बाढ़ आती है कहाँ नहीं आती है, इधर का उधर अनाज चला जाता है, सब कुछ चल जाता है, लास्ट में तो चारों तरफ हाहाकार होगा। तो उस समय पर जब पांचों भी तत्व इकट्ठे विकराल रूप लेंगे, आज मनुष्यों को आप समझा सकते हैं, तत्वों को कोई नहीं समझा सकता, ये शांति करार करते हैं, आपस में शांति की सभाएं करते हैं मनुष्य, समुद्र के साथ तो सभा करके देखे, धरणी को तो समझा के देखे, कोई नहीं देखे, क्योंकि बाबा कहता है ये जो पांच तत्व है, ये पांच तत्व भी अभी बहुत चिढ़ गए, नाराज हो गए, जिसको बहुत तंग किया जाता है ना, आखिर वो भी तो तंग करता है, वो भी तो तुम्हारे को हैरान करेगा। कल ही बाबा की मुरली में था ना, ये कराची, ये बम्बई, ये सब जाएगी पानी में, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, समुद्र की जमीन जो है, समुद्र सुखा के जमीन बनाई है, आज कोई अपनी एक इंच जमीन देने को तैयार नहीं है, और यहाँ इतनी जमीन लेके बैठे तो वापस लेगा या नहीं लेगा समुद्र, परंतु किसको मदद करेगा। बाबा क्यों कहता है तुम प्रकृति को योग का दान दो, इसीलिए बाबा कहते। एक बारी बहुत अच्छा बाबा ने समझाया, बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम प्रकृति को हमेशा योग का दान देते रहो, क्यों, तो तुमको प्रकृति अंत के समय सहयोग देगी। जैसे आज समझो हमारे को कोई प्रदर्शनी करनी है, कोई मेला करना है, कोई ग्राउंड है या हाल है, हम उस हाल वाले के पास जाते हैं, हम कहते देखो हमको ऐसा ऐसा मेला लगाना है, परंतु आप इतना पैसा नहीं लो, आप फ्री करके दो, अगर हमने उसकी सेवा नहीं की होगी तो बिल्कुल नहीं देगा, पर पहले से ही अगर हम उसकी ज्ञान और योग की सेवा की हुई होती है, उसको जाके हम बोलते हैं हमको प्रोग्राम करना है, कहेगा बहन जी आराम से करके जाओ, हर्जा नहीं, कोई नहीं, कुछ देने की जरूरत नहीं, आप करके जाओ, सहयोग मैंने दिया इसीलिए मुझे सहयोग मिल रहा। तो वैसा ही अभी अगर हम प्रकृति को, पांच तत्वों को योग का सहयोग देते हैं, तो अंत के समय ये प्रकृति हमारे को सहयोग देगी, औरों को डुबाएगी परंतु हमको डुबाएगी नहीं, औरों को धरणी में दबाएगी पर हमको दबाएगी नहीं, हम उधर से खिसक जाएंगे पर कौन खिसकेगा, सिर्फ ताली नहीं बजाना, उसके लिए तैयारी करना, कौन खिसक सकेगा जिसका बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। बाबा पहले से उसको इशारा देगा, जिसकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी और जिसने इस धरणी को सहयोग दिया होगा, जिसने समुद्र को, पानी को, सबको, आसमान को, पांचों तत्वों को जिसने योग का दान दिया होगा, लास्ट में ये हमको सहयोग देके हमारी दासी बन जाएगी। तो इसीलिए हमारे को बहुत बड़ा कार्य करना है, मनुष्य आत्माओं को भी लास्ट में आदत देनी है, उनको भी शक्ति देनी है, शांति देनी है, और ये पांच तत्व जो है इनसे भी हमको सहयोग लेना है, उसके लिए अभी से इनको सहयोग देना चालू करो, तभी हम विश्व कल्याणकारी गाए जाएंगे, नहीं तो ऐसा ही विश्व कल्याणकारी नहीं गाएंगे। हमारा बाबा पतित पावन है, वो पतित आत्माओं को पावन बनाता है और हम बच्चों के योग बल से ये पांच तत्व पतित से पावन बनते हैं। पतित भी हमने बनाया, इन तत्वों को पावन भी हमें ही बनाना है, तो इसीलिए विशेष इन तत्वों को भी योग का सहयोग दे करके आगे के लिए सहयोग लेने के लिए हमें तैयार होना है। ये सारी हमको तैयारी करने की है, सिर्फ ऐसा ही बाबा के महावाक्य सुन करके छोड़ नहीं देना। बाबा ने कहा ना, बाबा जो जो तुम्हें युक्तियां बताता है उन युक्तियों को ख्याल में रखो, उसको यूज करो। कहा जाता है युक्ति को जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको मुक्ति मिलने वाली नहीं। अपनी कमजोरियों से कमियों से मुक्ति लेने के लिए हमारे को बाबा की जो युक्तियां हैं उसको याद करके उसको हमें काम में लाने का है। बाबा हमें जो समझाता है वो सिर्फ ऐसा ही कथा नहीं सुनाता है, परंतु वो हमारे को बनाना चाहता है, हमारे को पावन बना के साथ में ले जाना चाहता है। आपको परसों की बाबा की मुरली याद होगी, कितना अच्छा उदाहरण बाबा ने दिया। कोई ही मनुष्य मरता है, उसको जाते हैं शमशान में जलाने के लिए, जो जलाने को जाते हैं जब तक जल के पूरा नहीं होता है वहां से निवटते हैं, वो जल के पूरा हो जाएगा तभी वहां से जाते हैं। तो बाबा ने कहा वैसा ही मैं आया हूँ पुरानी दुनिया खलास करने, जब तक खत्म नहीं होगी मैं जाने वाला नहीं हूं, तब तक मैं नहीं जाने वाला हूँ, ऐसा कैसे जाऊंगा, इस दुनिया को खलास करके नई दुनिया ला करके फिर जाऊं। तो बाबा का देखो कितना बड़ा प्लान है, तो इसीलिए हमें बाबा के कार्य में सदैव मनसा वाचा कर्मणा मददगार बनते हुए आगे बढ़ते हुए और अपना भविष्य भी उज्जवल बनाना है और अन्य आत्माओं को भी सुख दे करके उनका भविष्य भी उज्जवल बनाना है और अपने पास इतना स्टॉक जमा करना है जो हम जो भी हमारे दरवाजे पर आवे वो आकर के हमारे से सुख और शांति लेके जावे। इसीलिए बाबा ने आज भी प्रवृत्ति वालों को खास प्रेरणा दी है, खास चैलेंज दिया है कि आप ऐसा नहीं समझो हम घर में रहते हो, ऐसा समझो हम बाबा के सेवा स्थान पर रहते हैं। बाबा ने आपको ये सेवा स्थान दिया हुआ है, जैसा बाबा ने बच्चियों को सेवा स्थान दिया है सेवा करने के लिए, वैसा ये आपका परिवार नहीं है, बाप का परिवार है और आपको सेवा करने के लिए वहां निमित्त रखा है। आप उन आत्माओं की सेवा करो, उन आत्माओं की सेवा आप ज्ञान से नहीं कर सकते हो, आप अपने कर्मों के द्वारा सेवा कर सकते हो। आज अगर आप रिश्तेदारों को ज्ञान सुनाएंगे ना, कोई सुनेगा नहीं आपका ज्ञान, बोलेंगे बस हो गया हमने बहुत सुन लिया, परंतु जब आपके कर्मों में वो परिवर्तन देखेंगे वो देख के ही उनका भाग्य बनेगा। तो इसीलिए परिवार वालों को अपनी खुद की स्थिति को ऐसा बनाना है जो उनको देख करके उनके जो भी परिवार वाले हैं उनका भी कल्याण हो जाए, वो भी अपना जीवन ऐसा श्रेष्ठ और ऊंचा बनाना प्रारंभ कर देवे, ये बहुत बड़ी सेवा है। इतना भी अगर कर लिया ना हरेक ने तो आप बताओ एक एक घर स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग आने में कौन सी देरी लगेगी। तो इसीलिए ईश्वरीय कार्य में हम सभी मददगार बन करके और अपना सारा गुणों का और शक्तियों का स्टॉक जमा करके पीछे घर जाएंगे, बाबा के साथ हंसते हंसते जाएंगे, ना कि धर्मराज के डंडे खा के जाएंगे। ठीक बात है, पसंद है सभी को, क्या पसंद है आप लोगों को? कोई चाहेगा खुद के घर में जा रहा है और दरवाजे में कोई खड़ा होके उसको थप्पड़ मार रहा है, उसको अच्छा लगेगा? ये कितनी बड़ी इंसल्ट है। तो हम जा रहे हैं अपने घर में, हाँ परमधाम में, और धर्मराज वहां डंडे लेके बैठा हुआ होवे, उसके दूत डंडे लेके बैठे होवे, कितनी बड़ी इंसल्ट है। हम तो भगवान के बच्चे, बाबा कहता है उस समय तो मेरे को भी आंखें नीचे करनी पड़े तुम्हारे लिए। अरे मेरे बच्चे होके सजा भोग रहे, कौन से बाप को ये अच्छा लगेगा? इसीलिए बाबा देखो छोड़ता नहीं है, कितना हम बच्चों को घड़ी घड़ी सावधानी देता है, समझानी देता है, पुचकारता भी है तो कान भी पकड़ता है हमारे। कि तुम्हें कंप्लीट बनना है, बाप समान बनना है, वापस घर जाना है और नई दुनिया में आना है। ओम शांति।